तुलसीदास जी ने कहा, कथा कीर्तन जा घर नहीं संत नहीं मेहमान, वाघर जमड़ा डेरा दीना सांझ पड़े शमशान, लाओ प्याली लाओ शराब, पिशाची जीवन हो जाता है। कथा कीर्तन जा घर भयो संत भये मेहमान, वाघर प्रभु वासा कीनो वो घर है वैंकुट समान। एक तो वह घर है जहां हमारा शरीर रहता है, दूसरा वह घर है जहां हम रहते हैं। हम रहते हैं हृदय रूपी घर में, तो हृदय रूपी घर में भी सत्संग आदि है तो आदमी का व्यवहार, चाहे वो संसद पद पे है, चाहे अधिकारी पद पे है, चाहे उद्योगपति है या कोई साधारण पेशा नौकरी आदि है, जिनके अंतःकरण में सत्संग है उनका व्यवहार दिख जाता है जय राम जी की, और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनका व्यवहार भी प्रत्यक्ष हो जाता है। भगवान कहते हैं, गीता मैंने कल बताया था कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि मनुष्य जाति की जो चार आवश्यकताएं हैं वह गीता से ही पूरी हो सकती है, और गीता ने जितना बुद्धि का आदर किया है ऐसा किसी मजहब में बुद्धि का आदर नहीं, किसी पंथ में किसी मजहब में। गीता ने इतना तटस्थ पक्षपात रहित, इसमें किसी व्यक्ति किसी मजहब या किसी धर्म की प्रशंसा निंदा नहीं, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और मानवीय योग्यताओं के विकास के मूल सूत्र इस गीता में आए। मनुष्य में गीता पढ़ने की रुचि भले होती होगी, पढ़ते भी होंगे, लेकिन इन गीता के इस चार गूढ़ अर्थों पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। गीता में मुख्यतः चार विद्याएं हैं। एक है अभय विद्या, मृत्यु के भय से आदमी डरता रहता है। मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए गीता कहती है, शरीर तुम्हारा जैसे वस्त्र बदलना है ऐसे बदलना है, तुम अजर अमर आत्मा हो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय आदि। दूसरा, मनुष्य के जीवन में होता है राग और द्वेष, उस राग द्वेष को दूर करने के लिए साम्य विद्या है। तीसरा, मनुष्य के हृदय में होता है अहम प्रत्यय, अच्छा काम हुआ कि मैंने किया। कुछ थोड़ी मन की एकाग्रता से योग्यताएं बढ़ती है और मन के संकल्प विकल्प क्षीण होने से रिद्धि सिद्धियों का सामर्थ्य आता है और आदमी अपने को भगवान घोषित करने लग जाता है। तो ये जो अहम प्रत्यय है, इस अहम को दूर करने के लिए गीता में ईश्वर विद्या है, और अपने मैं को न जानकर देह को मैं मानने की गलती से ही 84 लाख जन्म हो रहे हैं, इस गलती को निकालने के लिए गीता में ब्रह्मात्मा एकत्व विद्या है, जो और अपनी अपनी जगह पर सर्वधर्म अच्छे हैं, लेकिन और जगह ये ब्रह्मात्मा एकत्व विद्या का दर्शन नहीं होगा, केवल गीता में ही होता है जय राम जी की। और गीता मनुष्य मात्र के उत्थान की बात करती है, गीता भगवान की वाणी है, नेता को भी इसमें से प्रकाश मिलता है, जनता को भी मिलता है, सेनानायक को भी मिलता है, सैनिक को भी मिलता है। एक सैनिक राग द्वेष से प्रेरित होकर किसी को गोली लगा देता है तो उसको हथकड़ियां लगनी चाहिए और जेल में जाना ही चाहिए, और रहता है। अगर वो अपने अधिकारी के आदेश के अनुसार बॉर्डर पर या नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के हुक्म के अनुसार वो चलाता है बंदूक, तो उससे प्रमोशन मिलता है। अर्थात सैनिक का मन इंद्रिय नियंत्रित है, अपने मन माना इंद्रियों माना वो आवेश में आकर नहीं करता है, लेकिन जो करना चाहिए वो आदेश मिलता है तब करता है, तो उसको पगार भी मिलता है, धन्यवाद भी मिलता है, इनाम भी मिलता है, आगे चलकर प्रमोशन भी होता है। तो इस बात का प्रत्यक्ष हो रहा है कि हमारी इंद्रियां और मन अगर किसी अधिकारी के अधीन है, और वह बाहर का अधिकारी नहीं प्राणी मात्र का परम हितेशी परमात्मा रूपी अधिकारी के अधीन है, तो हमें मोक्ष रूपी प्रमोशन भी मिलता है, यहाँ यश भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, जय घोष भी मिलता है। गीता ऐसा ग्रंथ है। अब बताओ इसमें कहाँ है हिंदू की बात या मुसलमान की, ईसाई या पारसी की। आपकी सुषुप्त शक्तियों को विकसित करने की बात है। आपके मन इंद्रियों पर नियंत्रण करके आप साम्य विद्या का प्रसाद पाइए। समत्व योगम उच्चते, योग शब्द श्री कृष्ण को बहुत प्यारा रहा होगा। युद्ध के मैदान में 64 बार श्री कृष्ण ने योग शब्द उच्चारण किया है। 12 प्रकार का योग होता है मुख्यतः। उन 12 प्रकार के योगों में से किसी भी योग का सहारा लेने से आदमी की शक्तियों का विकास होता है, ये बात हमें मान्य है, स्वीकार्य है। फिर भी आज के मनुष्य के लिए हठ योग करना जरा कठिन है। सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में चला जाए, गिरी गुफा में योग साधना करे, आज के मानवी को कठिन लगेगा। नादानुसंधान करना है तो कान में उंगली लगाकर आंखों पर हाथ रख के और जो नाद चल रहा है उसको देखकर नादानुसंधान योग का अवलंबन ले तो अलग अलग शब्दों के स्वर सुनाई पड़ेंगे 10 प्रकार के, और बाहर का आकर्षण कम होगा, मन में शांति प्रसन्नता आदि आएगी। किन जितनी देर जितने दिन योग करेंगे उतना देर तो रहेगा, लेकिन जिस दिन नहीं किया उस दिन फिर जैसे चाय के बिना दिन कैसा होता है ऐसे होने की संभावनाएं होती। फिर भी इस चाय पीने वाले व्यसनी की बराबरी इस योगी से हम नहीं कर सकते, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे अपने अपने जगह पर सब योग अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस युग में एक ऐसा योग ईश्वर कृपा से, उन 12 योगों में से एक ऐसा योग हाथ लग गया गुरु कृपा से कि जो योग हमें करना नहीं पड़ता है ईश्वर कृपा से होने लगता है। जो होने लगता है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता और भूल का भय नहीं होता। पिता की उंगली पकड़कर हम चल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, गिर जाना या संभले रहना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन पिताजी जब हाथ पकड़ के चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है, पिता की जिम्मेदारी हो जाती है और फिर गिरने की संभावनाएं नहीं जैसी हो जाती। हालांकि हमारे पैर लथड़ जाए, कमजोर हो जाए, हम गिर पड़े, फिर भी पिता के हाथ से हाथ नहीं छूटता है। ऐसे इस युग में अल्प आयुष्य, अल्प मति और अल्प मन होने के कारण हम अपने बल से, अपने बूते से, अपने पुरुषार्थ से सिद्ध योगी हो जाएं ये संभावना है बहुत कम। इसलिए निर्बल को हमेशा बलवान की शरण लेनी पड़ती। संसद को पता है कि जिनका ऑफिस में फाइल रुका है या कामकाज नहीं हो रहा तो उनके घर पहुंच जाते, साहब देखो तहसीलदार ने ये, साहब फलाने साहब ने धक्के खिलाए, अब आप चलिए, फोन कर दूंगा, अच्छा हो जाएगा। तो फाइल को चलाने में लिए के लिए संसद का बल चाहिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए संसद वाले व्यक्ति का बल नहीं चाहिए, किसी सतगुरु का, किसी संत का सहयोग हो तो फाइल चल पड़ती है और काम बन जाता है, जयराम जी बोलना पड़ता है, नारायण नारायण। तो हमेशा दुर्बल अंग को बलवान अंग का सहयोग चाहिए। तो सबसे बड़े बलवान तो भाई भगवान है, चाहे उनको श्री राम कह दो, कृष्ण कह दो, आत्मा कह दो, शिव कह दो, जगदम्बा कह दो, भगवान सर्वोपरि सत्ता है। और उस निर्बल के बल जब भगवान है तो भगवान की शरण लेकर जो योग किया जाता है वो शरणागति योग के नाम से प्रसिद्ध है। शरणागति योग में आप केवल भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं और गुरु ने जो मार्ग बताया और मार्ग बताने के साथ गुरु ने जो फाइल को धक्का मारने का थोड़ा टेलीफोन तो नहीं लेकिन संकल्प या शुभ भाव कर दिया तो वो शुभ संकल्प शुभ भाव आपके मूलाधार केंद्र को थोड़ा सा, जहां जीवन की शक्तियां छुपी है वहां उसको आंदोलित करेगा। जैसे आप बोरिंग करते हैं तो किसी के बोर का पानी ले आते हैं थोड़ा सा ताकि ट्यूबवेल कर सके, फिर तो अपने बोर का पानी बहुत हो जाता है। ऐसी जिन महापुरुषों को अनुभूति हुई है, इस रास्ते गए हैं, उन महापुरुषों से जब हमको दीक्षा के साथ साथ संप्रेक्षण शक्ति का प्रसाद मिलता है तो हमें योग करना नहीं पड़ता, योग होने लगता है। जयराम जी की। जब योग होने लगता है तो हमारे को आनंद शांति प्रसन्नता का एहसास होता है। मन जैसा शत्रु त्रिभुवन में कोई नहीं और मन जैसा मित्र भी त्रिभुवन में कोई नहीं। मन को अगर व्यसन अच्छे लग गए तो मन जैसा बदमाश खतरनाक शत्रु कोई नहीं। मन को अगर ध्यान भजन और सत्कर्म में चस्का लग गया तो मन जैसा बढ़िया सज्जन मित्र और कोई नहीं। और मित्र तो शमशान तक आपको छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन सज्जन मन तो आपको स्वर्ग में ले जाएगा, वैकुंठ में ले जाएगा, उससे भी ज्यादा सज्जन है तो परमात्मा के साथ मुलाकात कर देगा। जय राम जी बोलना पड़ेगा ना। और मित्र या शत्रु तो तुम्हारी निंदा करेंगे, बहुत बहुत तो तुम्हारे पर जाली केस लगवाएंगे, तुम्हें 2, 4, 5, 10 साल जेल में भेज देंगे, अधिक खतरनाक हुए तो तुम्हें फांसी लगवा देंगे। इससे ज्यादा शत्रुओं की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मन अगर शत्रु हो जाता है तो 84 लाख जन्मों तक जीवात्मा बेचारा भटकता रहता है माता के गर्भों में। इसलिए मन अपना मित्र बनाने से बढ़कर संसार में और कोई अकलमंदी का काम नहीं, और मन को अपना शत्रु बनाने से संसार में बेवकूफी की पराकाष्ठा हो गई। मैंने सुनी वो विनोदी कहानी, एक आदमी किसी गांव से यात्रा करते करते एक छोटे से गांव में पहुंचा और वहां गांव के लोग पानी भरते थे कुएं के पनघट पर। उसने अपनी सलवार, पहले सलवार कुर्ते पहनते थे लोग, सलवार ऊंची की और उसने बाथरूम करना शुरू कर दिया। तो गांव की बुढ़िया बाई ने कहा कि तू कौन है, इधर कैसे शर्म नहीं आती तुझे, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम बेवकूफ है। कि इधर कहां से आया? बोले फलाने गांव से। बोले क्यों आया? बोले मेरी औरत खो गई, उसको खोजने आया हूं। औरत का नाम क्या है? बोले फजेती। बुढ़िया माई और दूसरी माई हंसने लगी, अरे तू फजेती को खोजने को आया, तू बेवकूफ और फजेती को खोजने निकला है, तू जहां जाएगा वहां तेरी फजेती हाजिर रहेगी, नाम बेवकूफ है, तेरे कर्म बेवकूफी के हैं, और फिर फजेती को खोजने निकला है, फजेती तो तू जाएगा वहीं होगी, फजेती तो हाजिर है, तेरी छाया की नहीं तेरे साथ चलेगी। जहां बेवकूफी होती है वहां फजेती तो होना स्वाभाविक है। ऐसे जहां मन की बेवकूफी होती है वहां माता के गर्भों में ऊंधा लटकना, मरना, जन्मना, फिर मरना, जन्मना, जीवन भर कट्ठा किया हमारा हमारा, मृत्यु का धक्का लगा, काल हंसता है, हमारा हमारा करने वाला देख, शरीर भी हमारा नहीं रहा, चल दिया, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है, खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है एक दिन, शरीर को लोग अग्नि दान दे दे, उसके पहले किसी योगी से योग दान मिल जाए और परमात्मा से ध्यान का दान मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हरि कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो सफल होवै सब काम, सफल होवै। हरि हरि ओ गीताया श्लोक पाठे। अथे न गीताया श्लोक गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के एकाद श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। हरि हरि ओ भगवान कहते हैं कि नारद में कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त सत्संग कीर्तन ध्यान करते हैं वहाँ तो मैं हर दिल में ज्ञान रूप से, प्रेम रूप से, आनंद रूप से, निर्भयता रूप से, सरलता और सहजता रूप से मैं उन अंतःकरण में प्रकट होता हूँ। नारद मरने के बाद तो कोई विरला पुण्य आत्मा वैकुंठ में आता है, लेकिन जहाँ हरि कथा हरि चर्चा होती है वहाँ तो भूमि भी वैकुंठ की खबरें देने लगती है। काम क्रोध लोभ मोह भय शोक चिंता चुगली अशांति उस सत्संग की सभा में नहीं रहती जहाँ हरि के प्यारे संत आ जाते हैं। वैकुंठ में तो मरने के बाद आदमी पहुंचता है, लेकिन मृत्यु लोक का वैकुंठ तो सत्संग सभा है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वहि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि, पावन नाम दिलों का दुल्हारा नाम, ओम काली का किनारा नाम, पाप का निवारक नाम, ओम पुण्यों का प्यारा नाम, ओम पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम। मनोरंजन प्यारा नाम हरि, मोह निवारक सब सुख कारक हरि, ओम पतित उद्धारण पार उतारण हरि, ओम पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम हरि, ओम हरि ओम। पशुपति ओम शंकर ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम, बंगाल में गौरंग बोले हरि हरि ओम,
पंजाब में नानक आखे हरि हरि हो, महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हो, बिहार में सभी बोले हरि हो, मंदसौर में तुम हम बोले हरि हरि हो, सूरत में सभी बोले हरि हरि हो, भारत में बहुती बोले हरि हरि हो, मंगल मंगल राम हरि हो, पावन पावन राम हरि हरि हो,
का चूल हरा नाम
तुम उसे प्यार करते जाना, तुम तो स्नेह करके उसका कीर्तन करना उसकी शरणागति नहीं क्या।
परमेश्वर की शरणागति हम स्वीकारेंगे, जीवन की शाम हो जाए। कुटुंबी मुखड़ा मोड़ ले उसके पहले हमारा मन तेरे साथ जोड़ने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए। आंखों की रोशनी कम हो जाए उसके पहले हमारे हृदय की रोशनी बढ़ा देना मेरे प्रभु। कान बहरे हो जाए बुढ़ापे के कारण, पैर थक जाए, घुटने दर्द करने लगे, उसके पहले हमारी आध्यात्मिक यात्रा करने का हमें उत्साह और प्रेरणा देना प्रभु। संसार की सब चीजें छोड़कर अकेले मरना पड़े अनाथ होकर, उसके पहले हे नाथ तेरे ज्ञान का, तेरे भक्ति का और तेरे ध्यान का, तेरे सत्संग का प्रसाद पच जाए, ऐसी कृपा करना प्रभु। हरी ओ
हरि हरि ओ कल भगवान का उपदेश हम लोगों ने सुना था योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियाः सर्वभूत भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त विशुद्ध चित्त संयत शरीर और जितेन्द्रिय है तथा संपूर्ण जीवों की आत्मा ही जिसका आत्मा है वह कर्म करते हुए भी अलिप्त रहता है। भगवान कहते हैं कि योग युक्त होकर व्यवहार करने से तुम अलिप्त रहते हो और भवबंधन से छूट जाते हो। भगवान कहते हैं कि तुम बुद्धिवादी मत बनना, बुद्धिमान मत बनना, बुद्धिजीवी मत बनना और बुद्धू भी मत बनना। बुद्धिवादी को वाद लगा है, बुद्धिजीवी बुद्धि बेचकर जी रहा है और बुद्धिमान को बुद्धिमान होने का मान है, लेकिन तुम तो बुद्धि योगी बनना। बुद्धि को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसी परमात्मा में बुद्धि को छुआकर फिर संसार का व्यवहार करना, तो तुम बुद्धि योगी हो जाओगे। तस्मात योगी भवा अर्जुना, अर्जुन तो इसलिए योगी हो फिर तीक्ष्ण बाण चलाने पर भी तुझे दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। तस्मात योगी भवा अर्जुनः, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना। योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से मुझे भजता है वो सर्वोपरि योगी माना गया है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमामतः। जो श्रद्धा युक्त होकर मुझ अंतर आत्मदेव के साथ योग करता है मति का, ऐसा योगी सर्वोपरि योगी है। लय योगी अच्छा है, धन्यवाद है, हम उसको छोटा नहीं बताते। हठ योगी ठीक है, कर्म योगी ठीक है, ध्यान योगी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। कोई मत, कोई धर्म, कोई मजहब बुरा नहीं मेरी नजर में, लेकिन सर्वोपरि बात भी हमारे सामने होनी चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना, इन सब योगियों में भी जो अंतर आत्म भाव से बचता है वो सर्वोपरि योगी है। भगवान शिव ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मा ध्यानम समाचरेत। हे उमा, भगवान शिव कहते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में नहाते हो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तुम द्रव्य की आहुति देते हो। वातावरण में कुछ सात्विकता आती है, अगर द्रव्य की चीजें शुद्ध है, नकली धूप नहीं है, तो आजकल तो नकली हवन भी बहुत चल पड़े, सब में नकल नकल नकल। उच्चारण ठीक है और यजमान की श्रद्धा है, पुरोहित की विद्वता और पवित्रता है, यज्ञ अच्छा है, लेकिन भगवान बोलते सब यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही। ऐसे यज्ञ करना अच्छा है, लेकिन ध्यान में यज्ञ में तो तुम्हारी वस्तुएं हैं, अग्नि में स्वधा स्वाहा होती है, लेकिन ध्यान करते तो तुम्हारे विकार परमात्मा में स्वाहा हो जाते हैं। ये अंतरंग यज्ञ है। दान करना चाहिए, जिसके पास धन है उसका सदुपयोग नहीं करता है तो धन का मजदूर है। दान करने की हम मना नहीं करते, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, यथा योग्य देश काल पात्र का विचार करके धन का सदुपयोग हो ऐसी कोशिश करना चाहिए। लेकिन आजकल तो धन दान ले लेके ले भागू लोगों की भी ऐसी समाज को भ्रीति हो गई है कि दान करने की इच्छा होते हुए भी लोग 10 बार सोचते हैं, और जल्दी से तो मुंजियों को दान करने की रुचि नहीं होती, और कहीं रुचि हुई तो सुनते हैं इधर हो गया उधर हो गया तो जरा बिचारे सुकड़ जाते, नहीं तो ऐसे आयोजन तो एक आदमी भी करवाता। जयराम जी की इधर तो कई मिलके भी करे तभी भी संदेह रहता है, करने करवाने वाले पर या तो देने वाले पर, ऐसा वैसा। फिर भी सत्कर्म तो करना ही चाहिए। जयराम जी की कभी यात्रा करते करते स्कूटर गाड़ी मोटर हवाई जहाज आदि यात्रा करते करते एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी यातायात तो होती रहती है। ऐसे कभी कोई अपराधी पापी अपने साथ कुल बर्बाद करने के लिए धर्मादे के पैसे खा जाए तो उसके कर्म जाने, लेकिन तू तो सत्कर्म करता ही रहे यार। जय राम जी की। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। और वो सत्कर्म बहिरंग है, यज्ञ करना, तीर्थ करना, दान करना, ये अच्छा है। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं ये अंतरंग सत्कर्म भी समझ लो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ध्यान बड़ा तीर्थ है, ध्यान बड़ा यज्ञ है, ध्यान बड़ा दान है। दान तो तुम वस्तु पैसे भूमि आदि का करते, लेकिन ध्यान में तो तुम अपने आप का ही दान परमेश्वर के चरणों में कर देते हो। अब बात रही कि ध्यान अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, महाराज उससे मिलेगा क्या? जय राम जी की। है तो अच्छी चीज, उससे मिलेगा क्या? ज्ञानेश्वरी गीता के 6th अध्याय के 10th श्लोक से लेकर आप देखेंगे ना, तो ध्यान से क्या मिलता है आप ताजुब कर लेंगे। ध्यान से जो मिलता है वो किसी और साधन से नहीं मिल सकता है दुनिया के, ऐसा ध्यान है।